रेडियो मानव रचना 107.8 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन और आप है मेरे साथ यानी दीक्षा के साथ और वक्त है कुछ खास बातें करने का आप ही की सेहत के बारे में और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए हेल्थ रिलेटेड हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नीता दबाई सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट। डॉक्टर नीता आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मानव रचना में।
थैंक यू दीक्षा।
तो डॉक्टर नीता आज हम बात करने वाले हैं 40 की उम्र के बारे में, यानी 40 की उम्र पहले एक जमाने में बहुत ही मेच्योर एज मानी जाती थी, यानी अगर आप 40 के हो गए तो आपकी उम्र जो है वो काफी बीत चुकी है, यानी आपकी जो यंग एज है वो खत्म हो चुकी है। तो 40 की उम्र में लेकिन आजकल काफी ज्यादा चेंजेस देखे गए हैं, यानी आज के दौर में देखे जाए तो 30-35 साल की उम्र में शादी होती है, 40-45 साल की उम्र में डिलीवरी होती है, ये बहुत कॉमन हो गया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे 40 में क्या क्या बदलाव आए हैं?
देखिए क्रोनोलॉजिकली अगर हम देखें तो 40 एक किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए एक बहुत सिग्निफिकेंट एज होती है
जी,
क्योंकि कुछ हमारे बॉडी के पैरामीटर्स होते हैं जो चेंज होने लगते हैं इस एज पे आके और बॉडी की जो एजिंग प्रोसेस है वो एक्सेलरेट हो जाती है। बट ये कहने के बावजूद मैं एक इम्पॉर्टेंट बात ये कहना चाहती हूँ दीक्षा कि यू आर वेरी राइट, नाउ डेज 40s इज एक्चुअली अ डिफरेंट लाइफ ऑल टुगेदर। 40s को आजकल द न्यू 30s कहते हैं और या द न्यू लेट 20s कहते हैं, क्योंकि बहुत कुछ जो 40s की एज में पहले माना जाता था कि अब नहीं हो सकता वो आजकल हो सकता है। एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कि हम प्रेगनेंसी के बारे में बात करते हैं तो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, हमारी शायद हमें जो याद है कि हमारी जो दादियाँ और नानियाँ होती थी वो शायद 40 के आसपास की होती थी और हम लोग का कंसेप्ट जो है कि एक 40+ मीन्स स्पेशली विमेन में तो कि शी इज ओवर द हिल वेरी नाइसली, अब तो वो मतलब ओल्ड एज की कैटेगरी में है। पर आजकल जो मेडिकल टेक्नोलॉजी जो इतनी एडवांस हुई है उसमें काफी हद तक हम इस एजिंग प्रोसेस को हम रोक तो नहीं सकते हैं पर रिटार्ड कर सकते हैं, हम उसको स्लो कर सकते हैं। सो अ लॉट ऑफ प्रोसेसेस लाइक जैसे एक प्रेगनेंसी होना, वैसे तो हम मानते हैं कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप 15-45 होती है क्योंकि 45 तक आपके पीरियड्स आते हैं, पर जो डिक्लाइनिंग फंक्शन होती है फर्टिलिटी की वो 30s लेट 30s में शुरू हो ही जाती है एंड नोबडी कैन एवर इमेजिन, बट नाउ बिकॉज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज वी कैन वुमन हु इज 45 कैन ऑल्सो कंसीव।
जी
सो जो नया ये चेंज ये बदलाव आया है दैट इज बिकॉज कि मेडिकल साइंस हैज मेड सो मच ऑफ एन एडवांसमेंट दैट लाइफ एक्सपेक्टेंसी हर एक इंडिविजुअल की बढ़ चुकी है। तो जिसको अगर 80-90 साल तक जीना है तो उसके लिए 40 तो एक मिड लाइफ ही हुई
जी,
है ना, ये नहीं कि वो मतलब केवल
बड़ा
हो गया है, क्योंकि आज से 20-25 साल 30 साल पहले तो 40+ लाइफ एक्सपेक्टेंसी ही 60s में थी। सो इफ यू आर 40 इफ यू आर 40+ इट मेंट दैट यू आर वेरी नियर वेरी ओल्ड एज
जी,
पर अब तो होल मीनिंग ऑफ 40s हैज चेंज्ड बिकॉज ऑफ दैट।
बिल्कुल जी हाँ, 40 की एज में किस किस तरीके की हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और आप 40 की उम्र में कैसे अपने आप को एकदम फिट एंड फाइन रख सकती हैं, ऐसी कुछ बातें करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर नीता दबाई। तो अगर आप भी कुछ जानना चाहें तो SMS के जरिए पूछ सकती हैं अपने सवाल 8010781078 पर। डॉक्टर नीता अभी अपने बात करी कि 40 की उम्र में कितना ज्यादा चेंज आ गया है, पहले 40 की उम्र को बहुत बड़ा माना जाता था, आजकल उतना ही छोटा माना जाता है, यानी करियर जो है वो चल रहा होता है, शादी शायद 40 की उम्र में बहुत लोग नहीं भी करते हैं और डिलीवरी की बात की जाए या फिर मदरहुड की बात की जाए तो 40 तो एक शुरुआत मानी जाती है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी लाइफस्टाइल एकदम से चेंज हो चुका है तो 40 की उम्र में किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं लेडीज को?
सी हालांकि मेडिकल साइंस हैज मेड सो मच ऑफ एडवांसमेंट और एज अब आजकल केवल अब एक कहावत होती है एज इज जस्ट अ नंबर, तो अब वो ही कहावत मैं इसके लिए भी इस्तेमाल कर सकती हूँ कि 40 इज नाउ जस्ट अ नंबर। बट डेफिनेटली ये एक प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन है और एक प्रैक्टिकल पॉइंट है कि 40s में कुछ चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं एंड इफ यू आर नॉट केयरफुल बाय द लेट 40s और बाय 50s यू कैन हैव आपकी हेल्थ काफी सफर कर सकती है अगर आपने उन प्रिकॉशंस को नहीं लिया। एक बहुत सिंपल सी चीज होती है वो है एक आपके मेंस्ट्रुअल पैटर्न में चेंज, हर लेडी का 40s हिट करते करते थोड़ा सा चेंज ज़रूर आ जाता है, और कई बार वो उस बात से घबरा भी जाती है। पुराने ज़माने में तो ये था, पुराना ज़माना आई मजन से, बट एज लॉन्ग बैक एज 15 ईयर्स बैक ये होता था कि अच्छा 40s में कुछ पीरियड्स में चेंज आ रहा है तो फटाफट आप यूट्रस निकलवा देते थे और ये ना, और एक बार यूट्रस निकल जाता है तो एक लेडी चाहे वो कितना ही अपने आप को फॉरवर्ड मानती हो या ये मानती हो कि मेरा यूट्रस में प्रॉब्लम है, उसको अपने यूट्रस से जुदा होने के बाद एक सैडनेस और एक लॉस ऑफ सेंस ऑफ फेमिनिटी होती ही होती है। सो कुछ चेंजेस पीरियड्स में आते हैं एंड वी शुड अवॉइड एनी ड्रेस्टिक मेजर्स। सो ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि 40s में थोड़ा सा आपका कैरेक्टर ऑफ पीरियड्स, थोड़ी इरेगुलरिटी हो सकती है, कुछ हैवीनेस आ सकती है पीरियड्स में या कुछ कम भी हो सकता है। सो कुछ चेंज फ्रॉम योर नॉर्मल पैटर्न होता है। अब ये चेंज केवल एज के हिसाब से हो रहा है या कोई पैथोलॉजी है, ये पता करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इफ़ टिल टुडे, अब आप आज अगर 38-39 की हैं या ओवर 35 हैं तो ज़रूर एक हेल्थ चेकअप ज़रूर हो जाना चाहिए कि थिंग्स आर फाइन और नॉट। द अदर थिंग इज़ कि 40s की एज में और जो प्रॉब्लम एक बहुत सिग्निफिकेंट होती है लेडीज़ में, वो है कि थोड़ी सी बोन लॉस होने लग जाता है। जो हमारा बोन्स जो हमारी बनती हैं, जो प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन है, ऑस्टियोब्लास्टिक फॉर्मेशन जिसको कहते हैं, वो पीक करता है 20s में और उसके बाद वो धीरे धीरे कम होता है। 40s में जाके वो एकदम से और कम होने लगता है। सो आपको बोन्स में प्रॉब्लम, दर्द वगैरह ये सब होने लगता है। अगर आप वेट गेन कर रहे हैं तो प्रॉब्लम्स लाइक डायबिटीज़ प्रिसिपिटेट हो जाती हैं और हार्मोनल्स प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। सो 40s एक वाटरशेड लाइन वेयर एज एजिंग प्रोसेस इज कंसिडर्ड ज़रूर है। हालांकि बिकॉज ऑफ दैट वाटरशेड लाइन और बिकॉज ऑफ द एजिंग प्रोसेस आपकी लाइफ किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं होती है, दैट इज़ attributable to the medical science. पर आपको इस बात को, इस बात से बहुत careful रहना चाहिए और it is wise to get yourself checked for lifestyle diseases at this time. और अगर इस time पे हमने, अगर 40s में हमने अपनी lifestyle अगर चाहे किसी भी pace से चल रही थी, हम we step back and we say कि नहीं हमें ये changes करने चाहिए इस age में, तो ये बहुत wise decision होता है, क्योंकि शायद आप जिस health में हैं 40s में, अगर आप केयरफुल रहें तो आपकी हेल्थ वैसी की वैसी ही रह सकती है इवन इन द 60s। सो 40s इज द टाइम टू बी केयरफुल।
जी, यानी थोड़ा बहुत ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप अपने चेकअप्स सही समय पर कराएं और साथ ही साथ काफी ध्यान आप अपनी डाइट पर भी रखें। डॉक्टर नीता दाभाई, अभी आपने कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में या कुछ ऐसी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में बताया जो कि देखी नहीं जा सकती, जो सिर्फ टेस्ट से पता लगाई जा सकती है, लेकिन ऐसी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो 40 की उम्र पार करते ही या 40 की उम्र पास आते ही साफ दिखाई देने लग जाती है। जैसे आप अपने चेहरे पर रिंकल्स देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आपके बालों की क्वालिटी बहुत खराब हो गई है, इसके अलावा आप अपनी आई साइट को वीक होते बहुत आसानी से देख सकते हैं। यानी ये कुछ ऐसे साइंस हैं जो आपको बताते हैं कि आपकी उम्र जो है वो बढ़ती जा रही है। बालों का सफेद होना या फिर बालों का झड़ना, ये एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है।
एब्सोल्युटली। इनफैक्ट दीक्षा, अगर हम बहुत केयरफुली देखें तो किसी भी इंडिविजुअल की, खास करके फीमेल्स की एज जो है, उसके अंडर आईज में कलर चेंज है या आईज के साइड में जो रिंकल्स जिसको हम क्रोस फीट कहते हैं, वो एक बहुत अच्छा एक पैमाना है या एक स्केल है जिसे हम कह सकते हैं कि हाँ, दिस लेडी इज एज्ड, शी में भी बहुत स्लिम होगी, बहुत वेल मेंटेन्ड होगी, बट जो फेस है, खास करके आईज हैं, उससे काफ़ी हद तक आपकी एज का पता चल सकता है। एंड बट द थिंग इज कि देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स विच कैन बी डन अबाउट इट। और ऑफकोर्स जैसे आप, तुमने पॉइंट आउट किया कि हेयर की क्वालिटी का कम होना, रिंकल्स आना, ये सब आपके अंदरूनी जो चेंजेस हैं उसका ही एक मिरर इमेज है, क्योंकि आपकी आंतें जो हैं वो स्लो डाउन करने लगती हैं, लिवर स्लो डाउन करने लगता है, जो आप पहले विटामिन्स एब्जॉर्ब कर सकते थे वो अब आज नहीं कर पाते हो। सो यू नीड टू लुक एट ऑल दीज थिंग्स एंड यू नीड टू चेंज योर डाइट टू अ लिटिल एक्सटेंट। यू ऑल्सो नीड टू लुक आफ्टर, फिजिकली भी यू नीड टू लुक आफ्टर योर स्किन। और हम लोग तो ये कहते हैं कि स्किन की देखभाल जो है आप अपने 20s में ही शुरू करिए। सो जो मॉइस्चराइजेशन जो स्किन को लिए चाहिए, जो सन डैमेज होता है, तो अपनी आदत बनाएं कि सनस्क्रीन यूज करें। सो ये सब चेंजेस 40s में शुरू होते हैं। 40s में कई बार कुछ एलर्जीज भी हो जाती है। सो ये सारी चीजें जो है दैट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ आपका जो सिस्टम जो चेंज हो रहा है वो उसी का रिफ्लेक्शन होता है। जैसे कि आपने कहा कि हेयर की क्वालिटी, वो भी आपके बॉडी का इंटरनल सिस्टम का ही रिफ्लेक्शन होता है। एंड सो मेनी टाइम्स इट्स ऑल्सो एन इंडिकेशन कि कोई सीरियस डिजीज भी हो तो भी ये सारी प्रॉब्लम्स दिखने लग जाती हैं। एंड इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 40s पे आके एक रियलिटी चेक करें अपने बारे में कि क्या हम सही राह पे जा रहे हैं, क्या हमारे डाइट ठीक है कि नहीं, क्या हमारा एक्सरसाइज लेवल ठीक है कि नहीं, क्या हम अपने चेकअप्स हमने अभी तक जो नहीं कराए वो कराएं कि नहीं कराएं, क्योंकि 40s जो है इस उम्र में कई गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स भी शुरू होते हैं, जैसे ओवेरियन कैंसर है, यूट्राइन कैंसर है। सो आपको एक चेकअप कराना बहुत ज़रूरी होता है, आपका बोन का चेकअप होना, आपकी इंटरनल सिस्टम का, एक्सटर्नल सिस्टम का, सब कुछ का चेकअप होना ज़रूर।
जी
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड बी डन, बिकॉज ये सब चीज़ें आजकल बहुत क्योरेबल हैं। और आपकी आप एक अगर अपने आप का रियलिटी चेक करें तो आप अपनी हेल्थ को, जैसे मैंने पहले भी कहा, बिल्कुल बढ़िया मेंटेन कर सकते हैं टिल यू आर इन योर 60s 70s ऑल्सो। बट 40s इज द टाइम दैट यू शुड वेक अप एंड यू शुड, बिकॉज मुझे ये लगता है कि देखिए 40s में आपका करियर भी स्टेबल हो जाता है, आपके बच्चे काफ़ी हद तक बड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे नहीं रह जाते, तो एटलीस्ट आपसे कम्प्लीटली डिपेंडेंट तो नहीं होते हैं, और आप में एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, स्पेशली इन वुमेन आई वुड से कुछ कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। तो ये चीज़ जो है उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं और अपना चेकअप ज़रूर कराएं। और आजकल तो लेट मी शेयर विद यू दीक्षा दैट इवन थिंग्स लाइक रिंकल्स हैं और ये इन सबका
ट्रीटमेंट
काफी हद तक ट्रीटमेंट है। सो यू शुड लुक योर बेस्ट एंड यू शुड फील योर बेस्ट ऑल्सो फ्रॉम इनसाइड।
जी
वो बहुत जरूरी है।
जी बिल्कुल, यानी बहुत सारी बातें ऐसी जो 40 की उम्र में आपको ध्यान रखनी चाहिए। करियर की भागदौड़ इतनी ज्यादा हो गई कि एक तो लड़कियां जो हैं वो शादी बहुत लेट करती हैं, 30-35 साल की उम्र में शादी करना आम हो गया है, और उसके बाद जब फैमिली वे में जाना होता है तो कंसीव करने के लिए भी 40 की उम्र आमतौर पर देखी जा सकती है। और आप एक्ट्रेसेस में देखें या फिर किसी ऐसे पर्सन में देखें जो बहुत ही करियर माइंडेड हो, तो वहां पर तो बहुत कॉमन सी चीज है। मैं आपसे यही जानना चाहूंगी 40 की उम्र के आसपास कंसीव करना कितना ज्यादा आसान है या कितना ज्यादा रिस्की हो सकता है।
आई वुड से दैट देखिए, जहां तक एक नेचुरल कंसेप्शन की बात हम कह रहे हैं, तो नेचुरल कंसेप्शन तो दीक्षा नॉट ओनली इज इट डिफिकल्ट, कई बार बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है नेचुरल कंसेप्शन की। आप सोचें कि बिकॉज दिस इज़ द टाइम जब आपकी ओवरीज एजिंग शुरू हो गई है, और आपकी ओवरीज जाने की अंडेदानी जो होती है उसमें जो अंडे होते हैं, जो भ्रूण का एक बहुत अहम हिस्सा होते हैं, वो आपकी जितनी एज है उतने ही पुराने होते हैं। तो अगर आप 40 के हैं या 39 के हैं तो योर एग्स आर एज ओल्ड एज यू, 39 ईयर्स और 40 ईयर्स ऑफ एज। तो उनमें डिवीजन की, डिवाइड करके एक एम्ब्रियो बनने की उसमें से जो क्षमता होती है वो थोड़ी सी स्लो, और वो जिसको कहते हैं टार्डी या स्लो हो जाती है। तो कई बार इसमें क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स हो जाते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम्स भी आपके ओल्ड हैं, तो उसमें जो एक यंग क्रोमोसोम और एक ओल्ड क्रोमोसोम में जो फ़र्क होता है वो यही होता है कि ओल्ड क्रोमोसोम्स जो होते हैं जब वो डिवाइड करते हैं तो उसमें कोई कुछ जेनेटिक एबनॉर्मैलिटीज हो जाती हैं। सो अगर आप नेचुरली कंसीव भी कर रहे हो 40s में, तो यू शुड एक्सेप्ट द फैक्ट दैट चांसेस आपकी प्रेगनेंसी में कुछ एबनॉर्मल होने की या एक एबनॉर्मल बच्चे को जन्म देने की ज्यादा है, डेफिनेटली ज्यादा है। सो हियर इज वेयर द मेडिकल साइंस कम्स इन एंड यू हैव मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन, जहाँ पे आपका एग जो है, टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह जिसको कहते हैं, जो एग है और जो सीमन है हस्बैंड का, वो फर्टिलाइज होता है बाहर टेस्ट ट्यूब में। और फिर उस फर्टिलाइज्ड एग को, जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं, वो इट इज़ सब्जेक्टेड टू टेस्ट्स कि ये सब बिल्कुल नॉर्मल है कि नहीं है। तो ये भी सब एडवांसमेंट हुआ है। तो जब अगर हमने टेस्ट कर ही लिया है कि एम्ब्रियो नॉर्मल है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सो व्हेन सच अ प्रोसेस अकर्स इन अ 40 प्लस वुमन, तो देन द चांसेस जो हैं एबनॉर्मैलिटी के वो कम हो जाते हैं। पर नेचुरल कंसेप्शन फिर भी डिफिकल्ट है। द अदर प्रॉब्लम्स विच यू कैन हैव व्हेन यू आर 40 एंड यू आर ट्राइंग टू गेट प्रेगनेंट, और यू बिकम प्रेगनेंट, और यू आर प्लानिंग अ प्रेगनेंसी, इसकी आपकी बॉडी की क्षमता, एक 26, 27, 28 ईयर ओल्ड या 30 ईयर्स ओल्ड जो फीमेल होती है उसकी बॉडी बहुत एडेप्टेबल होती है
जी.
और जो चेंजेस आते हैं अगर वो डिलिटीरियस चेंजेस या अगर वो चेंजेस खराब भी होते हैं तो बॉडी रिकवर कर जाती है
जी.
पर एक 40s की उम्र में एक तो चेंज बहुत अच्छे से आता नहीं है
जी.
और अगर आता भी है तो उसके रिकवरी के चांसेस बहुत कम होते हैं और मुश्किल होते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे अगर एक 40s में एक लेडी प्रेग्नेंट होती है और प्रेगनेंसी में डायबिटीज प्रेसिपिटेट हो जाती है इस लेडी में तो देर आर मोर चांसेस दैट शी मे रिमेन अ डायबिटिक
जी.
अगर हाई ब्लड प्रेशर प्रेसिपिटेट होता है तो देर आर हाई चांसेस दैट शी मे रिमेन अ hypertensive or a high blood pressure patient, she may remain that for lifetime.
जी
so
जी.
these are the problems which do occur at this age. So आपको बहुत ज़्यादा care की ज़रूरत है.
जी जी.
और अगर मुझसे कोई personally पूछे तो I would definitely advise my patients that don't wait for 40s.
जी.
Go the natural way, try naturally and try a plan your pregnancy definitely before 35. At least the first pregnancy. But contrary to that, मैं आपको दीक्षा बहुत frankly बताऊं कि मेरे practice में I see women who come at 40s who want a pregnancy और कई बार 45 पे भी आती हैं, pregnant भी आती हैं, जो specially जब ये artificial reproductive methods शुरू हुए हैं, test tube baby का जो trend शुरू हुआ है और जो opportunities मिली हैं कि अब now availability है, जैसे हमारे हरियाणा में, फरीदाबाद में भी है और बाहर भी है, बहुत easily available है ये facility एक individual को, तो now we even I have as recently like I was telling you before I have also seen I had a patient जो 47 years की थी और जिसकी twin pregnancy थी वो IVF से हुआ था
जी जी.
So ये सारा जो change है जो करीब करीब impossible हम उसको मानते थे 20 years back everything is possible
now.
But it comes with difficulties and you have to be prepared for that.
और इनके कुछ side effects भी होते हैं?
Side effects I would like just tell you that side effects का बस यही होता है कि जो problems होती हैं वो difficult होती हैं और उनसे recovery
थोड़ा सा मुश्किल
मुश्किल होता है
क्योंकि आपकी एज बढ़ रही है.
हाँ, so 40 plus woman अगर she has a crucial time or she gets into a crisis during pregnancy and कुछ बहुत से for example जैसे बहुत blood loss हुआ तो एक young patient में हम expect कर सकते हैं कि even if she is very bad we know that because she is young the tissues are young she will recover. Her chances of recovery are good, but in an older woman it becomes difficult. So ऐसे ladies को हम ये भी कहते हैं कि भाई you must have an institutional delivery, एक बड़े hospital में deliver करो जहाँ पे हर facility हो, हर तरीके का solution हो manage करने के लिए. So अगर आप इस age में हैं और चाह रहे हैं तो I wouldn't say it is impossible or it is not wise or anything like that because अभी ये सब हम बोल ही नहीं सकते.
जी जी बिल्कुल.
है ना, हमारे पास enough examples हैं जैसे तुमने कहा दीक्षा कि बहुत सारे लोग हैं celebrities हैं which for with whom it has been possible for them to do this. In fact एक बहुत पॉपुलर डायरेक्टर हैं गुरिंदर चड्डा जिसने मूवी बनाई थी कुछ टाइम पहले बेंड इट लाइक बेकहम और उसने और भी बड़ी फेमस मूवीज बनाई हैं. शी हैड अ ट्विन और ट्रिपलेट प्रेगनेंसी एट 45 46 इयर्स ऑफ एज जो उसको देख के भी हमें लगता था कि नहीं ये तो बहुत एज की है. सो बहुत सारी चीजें पॉसिबल है
जी. यानी काफ़ी पॉसिबिलिटीज हैं आज के ज़माने में भी. आज मेडिकल साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर दी और 40 साल की उम्र में माँ बनना ही बहुत आसान हो गया है. तो ऐसी कुछ बातें जो जुड़ी हैं आप ही की एज से 40 की उम्र के बारे में हम बात करें हैं और डॉक्टर नीता दवाई सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं. अगर आप भी कुछ जानना चाहें तो SMS या फोन कॉल के जरिए पूछ सकते हैं अपने सवाल 8010781078 पर. डॉक्टर नीता दवाई अभी आपने बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो एक आम आदमी को शायद नहीं पता है कि 40 की उम्र में एक महिला आज के समय में डिलीवरी भी हो रही है, आज के समय में माँ भी बन रही है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आ रही हैं लेकिन मेडिकल साइंस की तरक्की के कारण काफी आसान भी हो गया है वो सब जो पहले पॉसिबल नहीं था. लेकिन अब मैं जानना चाहती हूँ 40 की उम्र एक ऐसी उम्र होती है जहां पर आज भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो हमारे देश में हैं उनकी उम्र कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि बढ़ रही है, एक मिडिल क्लास फैमिली को देखें या लो मिडिल क्लास को देखें. साथ ही साथ मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ मेनोपॉज का टाइम जो है वो आ रहा होता है तो मेनोपॉज में किस किस तरीके के इमोशनल चेंजेस होते हैं या इस उम्र में और क्या क्या इमोशनल चेंजेस हो सकते हैं.
जैसे मैंने कहा दीक्षा की 40s स्पेशली फॉर ए वुमन इट्स ए वॉटरशेड लाइन, इट्स अ चेंज. तो वो इसलिए भी है क्योंकि जैसे हमारी अंडेदानी है उसका फंक्शन कम हो रहा है तो जाहिर है कि ईस्ट्रोजन जो एक फीमेल हार्मोन होता है वो भी कम होने लगता है एंड दैट इज द रीजन व्हाई वुमन गोज इनटू मेनोपॉज क्योंकि वो ईस्ट्रोजन खत्म होने लगता है. तो ये चेंज इसी टाइम शुरू होता है और बिटवीन 45 to 55 और लेट अस से फॉर एशियन वुमेन इट इज 42 to 52 ये एक एज बैंड होता है जिसमें मेनोपॉज शुरू हो जाता
जी,
है. सो आपकी चेंजेस जो मेंस्ट्रुअल चेंजेस जैसे हमने बताया वो भी इसी बात के उसका भी कारण यही है कि ईस्ट्रोजन की कमी हो रही है और ईस्ट्रोजन थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है तो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होती हैं. उसके साथ साथ मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम के साथ साथ आपका ईस्ट्रोजन का लेवल जैसे जैसे कम होता है तो ये नॉट ओनली फिजिकल बट इमोशनल मेंटल चेंजेस भी लाता है और एक इमोशनल लेबिलिटी हो जाती है. समटाइम्स अ वुमन इज़ वेरी हैप्पी, समटाइम्स शी इज़ वेरी सैड, वेरी डिप्रेस्ड. और खास करके जैसे जैसे एज बढ़ती है तो वो डिप्रेशन और चेंज, फ्लक्चुएशन, एंगर, ये सारी चीजें निकल आती हैं. हालांकि हम इसको एक मैच्योर एज मानते हैं और हम सोचते हैं कि नहीं, इस एज में तो अब आके एक इंडिविजुअल को, एक ह्यूमन बीइंग को थोड़ा सा वाइज हो जाना चाहिए और ये, पर पैराडॉक्सिकली फॉर वुमेन इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फेज आई वुड से, जहां पे वो अपना शी इज ट्राइंग टू बैटल विद द चेंज विच इज कमिंग इन हर बॉडी एंड बैटल विद द चेंज विच इज कमिंग ओवर हर माइंड. सो हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपका टेम्पर लूज होना, आपको डिप्रेशन होना, इरिटेबिलिटी होना, ये सारी चीज़ें बड़ी कॉमन हो जाती हैं इस एज में. और जैसे मैंने कहा कि इमोशनल लेबिलिटी हो जाती है. और दूसरी चीज़ ये है कि हम, मैं कई औरतों को जानती हूँ जिनकी जब स्किन में चेंजेस आने लगते हैं, हेयर में चेंजेस आने लगते हैं, एंड दे सी देयर वंस ब्यूटिफुल हेयर फॉलिंग ऑफ और बिकमिंग बैड एंड देन शी हैज़ टू कोप विद ऑल दीज इमोशनल चेंजेस, तो दैट ऑल्सो फर्दर पुशेज देम इन टू डिप्रेशन.
जी जी.
बट जो इसकी ब्यूटी है, वॉट आई फील इज दैट टूडे द मेडिकल साइंस इज देयर टू हेल्प यू आउट. आजकल जमाना हो गया हेयर ट्रांसप्लांट का. देर आर सच लवली अदर रेमेडीज फॉर हेयर, फॉर स्किन, एंड इस चीज को भी, हार्मोनल जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए भी देर आर, बिसाइड्स हार्मोनल ट्रीटमेंट देर आर अदर ट्रीटमेंट्स आल्सो विच कैन हेल्प यू. पर ये हेल्प तभी हो सकती है जब आप इसके बारे में अवेयर हो, जो हमारे इस प्रोग्राम का पर्पज है कि यू शुड बी अवेयर, है ना. तो अगर आप अवेयर हो कि ये मेरी 40s में मेरे ये सारी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, तो आपको हर चीज के लिए आपको हेल्प मिल सकती है, राइट फ्रॉम योर फिजिकल अपीयरेंस, योर मोस्ट सुपरफिशियल लेयर ऑफ योर स्किन से लेके आपकी इंटरनल प्रॉब्लम्स तक, आपकी हार्ट की, आपकी लंग्स की, हर चीज की जो जानकारी है आपको मिल सकती है. एंड यू हैव अपॉर्चुनिटी टू मेक अ चेंज, बट यू शुड बी अवेयर.
जी बिल्कुल, यानी अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, उम्र चाहे कोई भी हो, और 40 साल की उम्र में तो खास तौर पर अवेयरनेस जरूरी है. बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती भी हैं, लेकिन मेडिकल साइंस ने तरक्की कर ली है तो आपकी काफी प्रॉब्लम्स का सलूशन आपको आसानी से मिल सकता है. डॉक्टर नीता, अब चलते चलते बात करते हैं डाइट की. किस तरीके की डाइट होनी चाहिए जब आप 40 की उम्र की बात करती हैं, जहां पर बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, इमोशनल चेंजेस हैं, हार्मोनल चेंजेस हैं, यानी काफी ज्यादा बॉडी में जो चेंजेस आ रहे होते हैं, उस समय बहुत लेडीज परेशान भी होती हैं, तो वहां पर कौन कौन सी चीजें हैं जो खाई जाएं या जिनको अवॉइड किया जाए, और किस तरीके के मेडिकल टेस्ट कराने चाहिए समय समय पर?
वन थिंग दीक्षा इज दैट बिसाइड्स द डाइट पार्ट ऑफ इट, बहुत जरूरी है कि आप एक्टिव रहें. और अगर अभी तक 40 साल तक आपने कोई एक्सरसाइज रेजिम नहीं अपनाया है तो अब हाई टाइम है कि आप कुछ किसी तरह की एक्सरसाइज जरूर करें. और जो रिकमेंडेड है जनरली फॉर अ 40 ईयर ओल्ड पर्सन इज कि हफ्ते में 3 बार 30 मिनट्स की भी अगर एक्टिव एरोबिक एक्सरसाइज हो, लाइक वॉकिंग, फास्ट वॉकिंग और जॉगिंग और व्हाटएवर, वो भी आपके लिए बहुत इनफ है. वो भी आपको हार्ट हेल्दी रखने के लिए इनफ है. और जहाँ डाइट का सवाल आता है तो ईजिली डाइजेस्टिबल फूड फर्स्ट थिंग, यू हैव टू कट डाउन ऑन योर ऑयल. आपको ये याद रखना है कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है, सो आपको फैटी फूड डेफिनेटली अपने डाइट में से रूल आउट करनी नहीं है. आपको विटामिन्स और मिनरल्स का ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि आपकी इंटेस्टाइन्स में उतनी क्षमता नहीं रहेगी विटामिन्स एब्जॉर्ब करने की जो पहले होती थी. सो कॉन्सेंट्रेट ऑन विटामिन्स, कॉन्सेंट्रेट ऑन मिनरल्स जो आप फ्रूट से, वेजिटेबल्स से ले सकते हैं. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज योर कैल्शियम, स्पेशली फॉर अ वुमन, कि ये 40s की एज आ गई है जब आपको अपना कैल्शियम सप्लीमेंटेशन जरूर शुरू करना है.
जी जी.
और हमारे आम एक 250 ml के ग्लास का जो दूध होता है, उससे आपकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी या कैल्शियम की जो नीड है वो नहीं मीट होती है. सो यू हैव टू टेक कैल्शियम. आप चाहे उसको फूड सप्लीमेंटेशन में लें, पर बेटर तो ये होगा कि स्पेशली जो हमारी जो लेडीज हैं उनके लिए, कि कैल्शियम को टैबलेट फॉर्म में लें और उसके साथ साथ थोड़ा सा धूप में भी बैठें, क्योंकि विटामिन D3 की आजकल हमें बहुत ज़्यादा कमी दिखाई देती है. और विटामिन D3 जो है बहुत कम फूड में मिलता है, वो मिलता है आमतौर पे एग्स में, मिल्क में और फिश में, जो आमतौर पे जनता नहीं खाती है. सो यू हैव टू टेक सप्लीमेंट्स ऑफ दीज टू थिंग्स. सो ये दोनों चीज़ें आपको लेना बहुत ज़रूरी है. एंड द अदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज सम विटामिन सी इन योर डाइट, जो हमारे सिट्रस फ्रूट्स में, आंवला में, इन सब में होता है. क्योंकि विटामिन सी जो होता है वो एक स्किन में रिपेयर का, कोलेजन का एक बहुत अहम हिस्सा होता है. इट स्टिम्युलेट्स कोलेजन. सो अगर आपको डर है कि आपके रिंकल्स आ जाएंगे, तो यू मस्ट हैव लॉट्स ऑफ विटामिन सी. दैट इज वेरी वेरी गुड फॉर यू नाउ. सो इन सब के अलावा जो टेस्ट जैसे आपने पूछा दीक्षा, तो एक हम शुरू करते हैं ऊपर से, तो एक आई टेस्ट जरूर होना चाहिए. क्योंकि ये एज है जब आपको आपकी पास की नज़र का की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जिसे हम प्रेस बायोपिया कहते हैं. सो अपना नज़र का टेस्ट कराइए, आई टेस्ट जरूर कराइएगा, आप थायराइड टेस्ट कराइएगा, गेट योर ब्रेस्ट एग्जामिंड, एक मैमोग्राफी जरूर होनी चाहिए जो बेस लाइन होती है 40 ईयर्स पे. फिर एक आपका अल्ट्रासाउंड होता है जिससे हम स्क्रीनिंग करते हैं पेट की, बाकी सारे ऑर्गन्स की. पेल्विस का अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें यूट्रस, ओवरीज, इनकी सब की स्क्रीनिंग होती है. पैप्समियर होता है. और उसके अलावा आपका स्क्रीनिंग ब्लड टेस्ट होते हैं डायबिटीज़ के लिए, किडनी फंक्शन वगैरह के लिए. तो ये सारी चीज़ें ज़रूर कराइए आप, और एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ चेकअप कराइए, जिसमें आपके अगर फैमिली हिस्ट्री में कुछ इम्पॉर्टेंट है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है या ऑस्टियोपोरोसिस है, तो उसको नज़र में रखते हुए आप अपने डॉक्टर से मिलिए. और क्योंकि वी शुड एम कि आपको ये प्रॉब्लम्स ना हो, सो एक स्क्रीनिंग टेस्ट ज़रूर. एंड देन यू हैव टू मेक अ चेंज इन दिस एज, ताकि आप ऐसे ही ग्लो करें और आप ऐसे ही लगें जो आप जैसे 20s में या 30s में लगते थे. बिकॉज वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो. आजकल 40s में भी जो लेडीज आती हैं, दे इवन चेंज देयर करियर्स और दे स्टार्ट देयर करियर. सो वी हैव मेनी अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ एंड वी हैव स्टिल मेनी थिंग्स इन लाइफ टू डू. सो 40s के बाद स्लो पेस नहीं रखनी है, अपनी पेस उतनी ही रखनी है. सो फॉर दैट यू नीड टू वेक अप एंड बी अवेयर.
बिल्कुल, बहुत सारी बातें डॉक्टर नीता दवाई आपने हमारे साथ शेयर करी. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग.
Thank you, Diksha. It has been a pleasure because I am also 40 plus. Jee. So this has been a very special recording and a special session for me at Radio Manav Rachna.
बहुत सारी बातें डॉक्टर नीता दबाई ने बताई हैं जो जुड़ी हैं आप ही से. जी हाँ, 40 की उम्र में कैसे रखना है आपको अपना ख्याल. तो बहुत सारी बातों के साथ फिलहाल दीक्षा को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, रेडियो मानव रचना 107.8. Feel good, feel life.